mercy, Savior. Om Namah Shivaya, Savior. Om Namah Shivaya, Savior. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vachayanam. Namo Loe Sauvasahunam. Jaya Idhavalangate. Nauriya Sayalabhuvana Bhavanagano. Kevalanan Sariro. Ananjano namo chando. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र पर रची हुई है, जिसके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने श्री महावीर स्वामी भगवान के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है। प्रथम पुस्तक जो प्रथम अधिकार पेज दोष विहत अधिकार, उसमें हम 109 पृष्ठ पर आ गए हैं। अंग बाह्य शुत जो 14 प्रकीर्णक है, उसमें से हमने सामायिक प्रकीर्णक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण और अभी देख रहे कृतिकर्म, विनय, हाँ, ज्ञान विनय दर्शन विनय आदि हो गई ना, विनय की भी बात हुई और अभी कृतिकर्म देख रहे हैं। ये 6 नंबर की अपने कृतिकर्म की बात चल रही है। अभी हम पृष्ठ संख्या 109 पर आ गए हैं। उसमें से पहले बताया था कि ये आत्माधीन है, जीव स्वयं अपनी रुचि से करता है और ये अकेले शारीरिक क्रिया से संबंध नहीं है। जो समय दृष्टि जीव है, मुनि मुख्यतः मुनियों की बात है, फिर भी अन्य जीवों को भी लागू होगा ये बात। तो कहते ये आत्माधीन होता है, यानी कृतिकर्म स्वयं अपनी रुचि से जीव करता है, करना चाहिए ऐसी भाषा यहाँ लिखी है, क्योंकि ये तो चरणानियोग की भाषा चाहिए में होती है। क्योंकि जो विषय और कषाय के कारण जो कृतिकर्म किया जाता है, ये क्रिया करने से मुझे मोक्ष मिलेगा, ये क्रिया करने से मुनिपद होता है, ऐसी मान्यता तो मिथ्यात्व है। या किसी को दिखाने के लिए मान के कारण ये कृतिकर्म करता होगा तो ये भी उसका कुछ फल नहीं है, मोक्ष मार्ग रूप फल नहीं है, संसार परिभ्रमण रूप फल तो अवश्य मिलेगा। तो ये जो हमने चतुश्शिरा आदि जो बातें देखी थी, थोड़ा फुटनोट में देखते 108 पृष्ठ पर। ये जो क्रिया कर्म नाम है वो क्या क्या है, कृतिकर्म जिसको कहते हैं, तो कहते तस्य अर्थ विवरण कर कस्याम, उसका अर्थ विवरण करता हूँ 108 पृष्ठ पर फुट नोट में। पढ़ने की ताकत है कि नहीं, सुनने की? पहली 108 पृष्ठ पर तस्य अर्थ विवरण कस्याम, तस्य ने किसका, 107 में लिखा था नीचे, जम तम क्रिया कम्मम नाम, जो वह क्रिया कर्म है, कृति कर्म है, उसका अर्थ बताता हूँ। तम आदाहीनम पदाहीनम तिक्कुत्तम तियोणदम चदुसिरम वारसावत्तम तम सौवम क्रिया कम्मम नाम, यानी इसमें जो बातें होती है, आदाहीन पदाहीन तिक्कुत्त तियोणदम चदुसिरम वारसावत्तम, ये जो 12 आवर्त वगैरह जो बात है वो बताएंगे क्या क्या है। ये तो क्रियाकर्म, ये तो 6 भेद के हुए, क्रियाकर्म के 6 भेद हुए अभी हमने पढ़े ना, आदाहीन पदाहीन तिक्कुत्त त्योणद चदुसिर और वारसावत्त। तम क्रियाकम्मम छव्यम आदाहीनादि भेन, ये क्रियाकर्म 6 प्रकार का है, आदाहीन आदि भेदों से 6 प्रकार का है। तथ्य क्रिया कम्मे कीरमाणे अपायत्तम अपरवसत्तम आदाहीनम नाम, ये आत्माधीन आदाहीन आदाहीन मैंने आत्माधीन ये जो क्रियाकर्म है वो करने वाले के अपायत्तम यानी स्वाधीनता से करता है, अपरवसत्तम परवश से नहीं करता है, स्वयं अपने आत्माधीन होकर करता है। ये आत्माधीन हो गया। फिर वंदन काले गुरु जिन जिन हराणम पदक्षीणम काउन नमंसनम पदाहीनम नाम पदाहीन वारम किज्जंती। अब ये जो है प्रदक्षिणा जो है ना, पदाहीन मैंने प्रदक्षिणा यानी क्या कहते हैं इसका अर्थ, यहाँ लिखा है 109 पर दूसरे पेज में, देखो दूसरी लाइन में 109 पृष्ठ पर दूसरी लाइन में, वंदना करते समय जिन देव जिन गृह और गुरु की, जो अभी हमने पढ़ा था वंदन काले गुरु जिन और जिनहर, पदक्षिणम काउने ने प्रदक्षिणा देकर, तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार करना प्रदक्षिणा है। जिनहर यानी जिनवर कहा है उन्होंने, गुरु जिन और जिनवर कहा, यहाँ जिन गृह नहीं कहा है, यानी देव गुरु की जो प्रदक्षिणा देकर, तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार करना, उसको प्रदक्षिणा कहते हैं। पदाहीनम, पहला हुआ आत्माधीन, जो 109 पृष्ठ पर भी हमने देखा था और 108 पर भी पहले भेद का नाम ऐसे करके वहां लिखा था। ये दूसरा है प्रदक्षिणा, ये कृतिकर्म का दूसरा भेद है। हम 109 और यहाँ ऐसे एक साथ पढ़ते चले जाएंगे। तीन प्रदक्षिणा, हाँ, हम कोई बार बार करते हैं ना, हमें उनके बहुत अगत्य है, तो जब हम किसी को बुलाते तो आओ आओ करते हैं, या इसी तरह से तीन तीन बार ने वो हम उनके प्रति अति विनय बताने के लिए तीन बार किया जाता है। क्या कहते हैं पदाहीनम नाम, अभी मैं 108 पृष्ठ पर पढ़ रही हूँ तीसरी लाइन अंत में, पदाहीनम नमंसन आदि क्रियाणम तिन्निवार करणम तिक्खुत्तम नाम। ये तीन बार करने का नाम है तिक्खुत्त। फिर यहाँ आते 109 पर प्रदक्षिणा और नमस्कार का, अकेले प्रदक्षिणा है, प्रदक्षिणा देकर नमस्कार, फिर प्रदक्षिणा देकर नमस्कार, आप भी तीन तीन बार करते हैं ना, तीन तीन बार नमस्कार करते हैं, तो ये तो उसको तिक्खुत्त कहते हैं। तो प्रदक्षिणा और नमस्कार का तीन बार करना तिक्खुत्त कहा जाता है। ये तीसरा हुआ भेद। ये किसके भेद चल रहे हैं याद है, कृतिकर्म के, अथवा ये हम 109 पर पढ़ रहे, अथवा प्रत्येक दिन यानी रोज तीनों संध्या कालों में जिनदेव आदि की तीन बार वंदना करना तिक्खुत्त नाम का कृतिकर्म कहा जाता है। दोनों प्रकार से उसको तिक्खुत्त कहते हैं। संध्या काल का अर्थ होता है संधि, एक तो रात और दिन की संधि प्रातः काल, जो क्या कहते हैं उसको, सुबह उसको क्या कहते हैं, हाँ प्रातः काल, और दोपहर में मध्यान्ह और शाम को अपराह्न, इसको संध्या काल कहते हैं। क्या कहते हैं आगे भी पढ़ेंगे 109 पर, तीनों संध्या कालों में वंदना का विधान करके, यानी तीनों संध्या कालों में वंदना करना चाहिए इसका विधान उसके प्रोसेस बताकर, वह अन्य काल में नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार अन्य काल में वंदना करने का निषेध नहीं किया गया है। ऐसा नहीं कि तीन काल में करना चाहिए दूसरे समय नहीं करना, हाँ आप क्यों कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है, किंतु तीनों संध्या कालों में वंदना अवश्य करनी चाहिए। यह तीन बार वंदना करने के नियम का तात्पर्य है, तीन बार हुआ ना, वो तीन बार करना। इस प्रकार यह तिक्खुत्त नाम का तीसरा भेद है।
यहाँ तक समझ में आए?
पहला आत्माधीन, दूसरा प्रदक्षिणा, तीसरा तिक्खुत्त, अब चौथा भेद बताएंगे अवनति। हम यहाँ प्राकृत में पढ़ते 108 पर, वहां हमने पढ़ा था तीन निवारकरणम तिक्खुत्तम नाम चार लाइन तक आए थे, उस आधे से आगे पढ़ेंगे। अथवा एकम्मी चैव दिवसे, जो अभी हमने अर्थ पढ़ा है ना, वही बात यहाँ पर है। एकम्मी चैव दिवसे, एक ही दिन में जिन गुरु ऋषि वंदनाओ, यानी जिन गुरु और ऋषि वंदना जो है, तिन्नम वारम किज्जंती ती तिक्खुत्तम नाम, तीन वार करना उसका नाम तिक्खुत्त है। ओणदम अवनमनम भूमावासनम इति अर्थम, अभी चौथा जो भेद अभी बताने जा रहे हैं, ओणदम जो कहा है, ती ओणदम ऊपर कहा था पहली लाइन में, क्या कहते हैं ओणद किसको कहना, अवनमन को या भूमावासनम, यानी अवनति जिसको यहाँ कहे कि भूमि पर बैठकर नमस्कार करना, उसको यहाँ अवनति या ओणदम कहा है। तमच तिन्निवारम कीरदिति ती ओणदम इति भणिदम, वह तीन बार करने को ती ओणद उसको कहा। तम जहां, वह इस प्रकार है, आपने पूछा ना तीन तीन बार क्यों करना, यहां भी लिखा था, पहले यहां देखेंगे 109 पर, फिर हम आगे पढ़ेंगे। चौथा भेद अवनति है, आप वहां कुछ समझना कहां से हम पढ़ रहे हैं। इसका अर्थ भूमि पर बैठकर नमस्कार करना होता है, यह क्रिया तीन बार की जाती है। अब वहां हम हिंदी में ही पहले पढ़ लेते, जब जिनेंद्र देव के दर्शन मात्र से शरीर रोमांच हो जाता है, तब भूमि पर बैठकर नमस्कार करे, यह पहला नमस्कार है। जब जिनदेव की स्तुति कर चुके, तब भूमि पर बैठकर नमस्कार करे, यह दूसरा नमस्कार है। अनंतर उठकर सामायिक दंडक से आत्मशुद्धि करके, कषाय और शरीर का त्याग कर, जिसको हम कायोत्सर्ग कहते हैं ना, जिनदेव के अनंत गुणों का ध्यान करके तथा 24 तीर्थंकरों की वंदना करके, अनंतर जिन जिनालय और गुरु की स्तुति करके जो भूमि पर बैठकर नमस्कार किया जाता है, वह तीसरा नमस्कार है। इस प्रकार प्रत्येक क्रिया कर्म में भूमि पर बैठकर तीन नमस्कार होते हैं, ये एक एक क्रिया कर्म में तीन तीन बार वो भूमि पर बैठकर नमस्कार होते हैं। अब आगे का भेद बाद में हम पढ़ेंगे, यहाँ प्राकृत में आते 108 पृष्ठ पर। देखो प्रत्येक क्रिया कर्म में पहले क्या किया कि सामायिक किया, सामायिक के बाद अच्छा हर बार तीन हो गए, ये एक बार पूरा करते ना प्रत्येक क्रिया कर्म, मैंने एक बार किया तो उसमें पहले सामायिक किया, सामायिक दंडक किया, उसके बाद नमस्कार किया, फिर प्रदक्षिणा दी, उसके बाद नमस्कार किया, फिर उनका स्तुति किया, फिर नमस्कार किया, यानी वो बीच बीच में एक एक क्रिया कर्म लेना। क्रिया कर्म कितने बार किया जाएगा उसमें ये तीन नमस्कार, तो तीनों बार तीन नमस्कार हो जाएगा। देखो हम यहाँ पढ़ते प्राकृत में, आपका जो प्रश्न है ना उसका उत्तर यहाँ आ गया। तम जहा शुद्ध मनो धोद पादो, इसका अर्थ क्या है, शुद्ध मन से यानी पैर धोकर, जिनिंद दंसन जनिद हरिसेन, जब मंदिर में जाते हैं तो पैर धोकर अंदर जाने की प्रथा है ना, शुद्ध मन से जिनेंद्र भगवान के दर्शन से उत्पन्न हुआ है हर्ष जिसके, पुलैद अंगो, यहाँ रोमांचित कहा था ना, अंग पुलकित हो गए हैं। संतो, संतो ने होते हुए, संत ने कोई संत महात्मा की बात नहीं है। जम जिनस अग्गे वही सदी तम एगम ओणदम, जिनेन्द्र भगवान के आगे जो बैठकर नमस्कार किया जाता है उसको पहला नमस्कार कहेंगे। एक ओणद, एक है ना, एक ओणद हुआ वहां, ती ओणद है ना, उसमें से एक ओणद हुआ। जमुठी ऊण जिनिंद आदिणम विनतिम काऊण वैसणम तम विदिय मोदनम, यानी फिर उठकर जिनेन्द्र भगवान की जो स्तुति आदि की जाती है और फिर बैठकर दूसरा ओणद इन्हें नमस्कार होता है। पुनो उठिय, फिर से उठकर सामाय दंडेन अपशुद्धिम काउन, सामायिक दंड से, दंडक से आत्मशुद्धि करके सकसाय देहुसगम करिय, कषाय और देह का उत्सर्ग ने त्याग करके जिन अनंत गुणे झाइय, जिनेन्द्र भगवान के अनंत गुणों का ध्यान करके चौबीस तीर्थयराणाम वंदनम काउन, चौबीस तीर्थंकरों की वंदना करके, ये पहले हमने चौबीस तीर्थंकरों का स्थव आदि जो बात की थी ना, वो वंदना करके पुनो जिन जिनालय गुरुवाणम संथवम काउण, फिर से जिन जिनेन्द्र भगवान और गुरु, जिन जिनालय और गुरु संथवम काउण, यानी उनकी स्तुति करके जम भूमियेन वही सणम तम तिदियम ओणदम, फिर भूमि पर बैठकर नमस्कार किया जाता है, वो तीसरा ओणद है। एक एक कम में क्रिया कम में कीरमाणे तिन्नी चेव ओणम ओणमणानी होंती, एक एक क्रिया कर्म करते हुए ये तीनों ही नमस्कार होते हैं। एक क्रिया कर्म पूरा मिलकर एक क्रिया कर्म कहलाएगा, पहले से हमने जो देखे ना। तीन मिलकर जो एक कहलाता, देखो पहले मैं पहले क्या किया था, सुबह दोपहर और रात को या शाम को करते ना, वो एक क्रियाकर्म कहलाएगा। एक एक क्रियाकर्म के भेद क्या है, एक तो आत्माधीन है, फिर प्रदक्षिणा है, वो तीन बार प्रदक्षिणा की जाती है, उसके बाद तिक्खुत्ते ने वो तीन बार नमस्कार करना, प्रदक्षिणा और नमस्कार तीन बार करना, वही तिक्खुत्तवा। एक क्रियाकर्म ये सब मिलकर एक क्रियाकर्म कहलाएगा, और एक क्रियाकर्म के अंदर ये तीन नमस्कार होते हैं भूमि पर बैठकर। यानी पहले आत्माधीन है, तीन प्रदक्षिणा नमस्कार के साथ हुई, वो अलग तीन बार हुआ ना, और फिर अवनति हुई, भूमि पर बैठकर नमस्कार हुआ। ये सब उसी के भेद है, हाँ, वो सब मिलकर एक क्रियाकर्म होगा। ये छह भेद है ना, वो एक क्रियाकर्म के भेद है। जब जब क्रियाकर्म करेंगे तो ऐसा ही करेंगे। भूमि पर बैठकर एक बार नमस्कार है, हाँ तीन नमस्कार हुए। एक कृति कर्म में, हाँ ये पूरे छह भेद एक कृति कर्म के हैं। सव क्रिया कम्मे चतुशीरम होदी, अब यहाँ जो है पांचवा भेद, पहले हिंदी में पढ़ेंगे। शिरोन्नति है यह विधि, चार बार की जाती है, सामायिक प्रारंभ करते समय जिन देव को मस्तक नवाकर नमस्कार करना, यह पहली शिरोन्नति है। सामायिक के अंत में सिर नवाकर नमस्कार करना, यह दूसरी शिरोन्नति है। स्थोत्सामी दंडक के आदि में सिर नवाकर नमस्कार करना तीसरी शिरोन्नति है और थोत्सामी दंडक के अंत में सिर नवाकर नमस्कार करना चौथी शिरोन्नति है। इस प्रकार एक क्रियाकर्म में चार शिरोन्नति होती है। यहाँ पर पढ़ते प्राकृत में ये दंडक है ना, उसके ये पाठ वगैरह जो कोई है, थोत्सामी का शब्दशः अर्थ क्या है नहीं मालूम है। थोत्सामी नहीं है ना, थोत्सामी आता है उसमें, हाँ उसी में थोत्सामी आता है क्या? नहीं नहीं मैं थोत्सामी शब्द उसमें आता है कि नहीं आता? हाँ हाँ बताना। थोत्सामी हाँ जैसे सामायिक दंडक का ना, वैसे थोत्सामी दंडक है वो जो कुछ बोलने का। सामायिक में आया था क्या? देखो पहले हमने सामायिक देखा था, उसमें थोत्सामी दंडक नहीं था मगर दूसरा कोई शब्द आया होगा उसमें। ये 90 पेज के आसपास होना चाहिए वो। नहीं मगर वो सामायिक जो है ना, वो सामायिक जब धारण करते तभी वो जो बोलने के बाद होती है। आपके पास वो मूलाचार वगैरह होगी ना कुछ, उसमें देख लेना जरा। हाँ थोत्सा में दंडक क्या है वो बात जरा देखना। हाँ इसमें नहीं होगा, वो चरणानियोग के ग्रंथ में वो मुनियों के जो होते हैं ना उसमें उसमें नहीं होगा। थोत्सामी दंडक प्रतिक्रमण के, हाँ उसमें थोत्सामी वो शब्द उसका अर्थ समझ में आएगा या आगे आगे भी आएगी बात। उसमें आता है थोत्सामी शब्द? चलो हम आगे बढ़ेंगे जरा। थोत्सामी यानी सामायिक के बीच में ही वो आएगा, पहले सामायिक शुरू किया हाँ और फिर थोत्सामी दंडक के समय और बीच में थोत्सामी दंडक। देखो प्राकृत में हम पढ़ेंगे सव क्रियाकर्म में चतुस्थिरम होदी मिला, ये सभी क्रियाकर्मों में चतु अवनति, यानी उसको क्या कहते हैं, शिरोनति कहते हैं। तम जहां चतुशिरम क्यों कहा, चार बार होती है ना, इसलिए चतुशिर कहा। सामायस्य आदि जिनिंदम पड़ी शीशनमणम तमेगम तम एगम सिरम। सामायिक के शुरू में जिनेन्द्र के प्रति नमस्कार करना, मस्तक नमाकर, वो एक सिर हुआ। तस्सेव अवसाने, उसके अंत में जम शीश नमणम तम विधियम शीशम, जो सिर नवाकर नमस्कार करते वो दूसरा सिर कहेंगे उसको। थोस्सामी दंडे से आदि जे जम शीश नमणम तम तदियम सिरम, थोस्सामी दंडक के आदि में जो किया जाता है वो तीसरा, और तस्सेव अवसाने उसी के अंत में जो किया जाता है वो चौथा। एवं एगम क्रिया कमम चतुशिरम होती, एक क्रिया कर्म में चार बार शिरोन्नति होती। अथवा करके दूसरी बात कहते हैं, अथवा पूर्वमपि क्रिया कमम चतुशिरम चतुपहाणम होती, यानी पूर्व में क्रिया कर्म चतुशिर है वो चार प्रकार से होती है। अरिहंत सिद्ध साहु धम्मे चेव पहाण भूदे काउन सौ क्रिया कम्माणम पौत्ति दंसनादो। यानी ये जो अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म चार बातें हुई ना, इनके प्रधानता करके सभी क्रिया कर्मों की प्रवृत्ति देखने में आती है। सामाय थोस्सामी दंडयाणम आदि अवसाने च मणवयनकायाणम विशुद्धि परावर्तन वारा वारस हवंती तेन एगम क्रिया कम्मम वारस आवत्तमिति बनिदम। सामायिक थोस्सामी दंडक उसके शुरू और अंत में मन वचन और काया से विशुद्धि परावर्तन बार बारह होते हैं, इसलिए एक क्रिया कर्म में बारह आवर्त होते हैं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे चौथी शिरोन्नति, वहां तक पढ़ा था हमने, मिला इसी क्रिया कर्म में ही 109 पृष्ठ पर। चार शिरोन्नति करना अन्यत्र नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। अथवा पहले जो क्रिया कर्म कहे आए हैं उसमें भी चार शिरोन्नति करना चाहिए, क्योंकि अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म को प्रधान करके सभी क्रिया कर्मों की प्रवृत्ति देखी जाती है, इसलिए उस अपेक्षा भी चार नमस्कार कहें। छठा भेद बारह आवर्त रूप है, ये 6 नंबर। सामायिक और थोस्सामी दंडक के प्रारंभ और अंत में मन वचन और काय की विशुद्धि की अपेक्षा कुल मिलाकर 12 आवर्त होते हैं। अतएव एक क्रिया कर्म में 12 आवर्त होते हैं ऐसा कहा है। यह सब विधि कृतिकर्म कही जाती है। इस प्रकार कृतिकर्म प्रकीर्णक में पूर्वोक्त समस्त विधि का कथन किया गया है। यही बात ये फिर दोबारा ये मूलाचार की टीका में से भी बताई है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये कृतिकर्म नाम का प्रकीर्णक हुआ, आप बोलेंगे कौन कौन से, ये देखे हमने पहले से, सामायिक चतुर्विंशति स्तव वंदना, हाँ प्रतिक्रमण विनय, हाँ विनय, बस विनय ऐसा ही उसका नाम था। विनय इतना ही नाम है उसका, 5 प्रकार के ज्ञान विनय दर्शन विनय। कहाँ की बात है, आप कहाँ की बात कर रहे हैं, वैनयिक प्रकीर्णक विनय के बारे में, हाँ वो वैनयिक प्रकीर्णक, वैनयिक प्रकीर्णक कहा उसको, सामायिक वैनिक प्रकीर्णक, मुझे लगा आप वैनिक प्रतिक्रमण कह रहे हैं। हमने बोला वैनिक फिर प्रतिक्रमण अलग से, प्रकीर्णक की बात कर रहे थे। और फिर ये हमने कृति कर्म देखा विस्तार से। अब 92 नंबर 109 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी लाइन, दशवैकालिक नाम का, एक में तो लिखा है एक में नहीं लिखा है, और मूल में भी थोसा में लिखा है, वो तो नहीं चाहिए ऐसा लगता है वहां थोसा में। अब दशवैकालिक नाम का प्रकीर्णक है, ये साधुओं के आचार अर्थात ज्ञानादि विषयक अनुष्ठान का और गोचार अर्थात भिक्षाटन का वर्णन करता है। यानी जब आहार को निकलते हैं तो किस विधि से जाते हैं, और ज्ञानादि विषयक जो अनुष्ठान है किस प्रकार से वो सारी उनकी क्रियाएं होती है, तो साधुओं के आचार संबंधी ये सारी क्रियाएं बताते हैं। उत्तराध्ययन प्रकीर्णक, ये दशवैकालिक कितना नंबर का हुआ, 7 नंबर का हुआ। और उत्तराध्ययन 8 नंबर का प्रकीर्णक हुआ। ये प्रकीर्णक 7वां 8वां, ये 4 प्रकार के उपसर्ग और 22 परिषहों के सहन करने के विधान का और उनके सहन करने के फल का, तथा इस प्रश्न के अनुसार यह उत्तर होता है, इसका वर्णन करता है। अभी तो एक एक दो दो लाइन में एक एक प्रकीर्ण का वर्णन करेंगे। ऋषियों के जो व्यवहार करने योग्य है और उससे स्खलित हो जाने पर, स्खलित होना यानी चूक जाना, दोष लगना, जो प्रायश्चित होता है, इन सब का वर्णन कल्प्य व्यवहार प्रकीर्णक करता है। प्रायश्चित का वर्णन ये 9 नंबर का प्रकीर्णक हुआ। साधुओं के और असाधुओं के जो व्यवहार करने योग्य है और जो व्यवहार करने योग्य नहीं है, इन सब का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का आश्रय लेकर कल्प्याकल्प्य प्रकीर्णक कथन करता है। पहला प्रायश्चित संबंधी कल्प्य व्यवहार था और ये कल्प्याकल्प्य प्रकीर्णक है, वो तो करने योग्य और नहीं करने योग्य बातें उसको बताएंगे। दस नंबर हो गया अभी, दीक्षा ग्रहण शिक्षा आत्मसंस्कार संलेखना और उत्तम स्थान रूप आराधना को प्राप्त हुए साधुओं के जो करने योग्य है उसका द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का आश्रय लेकर महाकल्प्य प्रकीर्णक प्ररूपण करता है। ये 11 नंबर हुआ महाकल्प्य। कृतिकर्म तक हमने 6 देखे थे, उसके बाद दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प्य व्यवहार, कल्प्याकल्प्य और महाकल्प्य देखे। अब पुंडरीक प्रकीर्णक 12वां नंबर, भवनवासी वानव्यंतर, ये व्यंतर को ही वानव्यंतर कहते हैं, ज्योतिष कल्पवासी और वैमानिक संबंधी, कल्पवासी विमानी, देव इंद्र और सामानिक आदि में, सामानिक का अर्थ क्या होता है, अन्य जो है ना, इंद्र के जो नीचे दूसरे जो अन्य होते हैं उसके हम 10 भेद देखते हैं, उसमें वो सामानिक कहते हैं, आदि में, सामानिक आदि में लिया, उत्पत्ति के कारणभूत यानी उनमें जो जीव जन्म लेते हैं उसके कारणभूत दान पूजा शील तप उपवास सम्यक्त्व और अकाम निर्जरा का, तथा उनके उपपाद स्थान, किनके, ये देवों के उपपाद स्थान यानी जन्मने के स्थान, जो उनकी वहाँ उपपाद शैयाएं होती है वहाँ क्या कैसे वर्णन उस संबंधी बताते हैं, और भवनों के स्वरूप का वर्णन करता है, उनके जो भवन है वहाँ रहने के ठिकाने हैं उसका भी वहाँ विस्तार से वर्णन करता है। ये पुंडरिक में आ गया सब, महापुंडरिक 13वां नंबर का। उन्हीं भवन मासी आदि पूर्वोक्त देवों और देवियों में उत्पत्ति के कारणभूत तप और उपवास आदि का प्ररूपण करता है। इसमें क्या फर्क हुआ? एक्चुअली महापुंडरिक में वो ज्यादा भवन मासी को छोड़कर ऊपर के दे, वहां वो जन्मने वालों की बात है, मगर पुंडरिक में वो आ गए ना, हमने पहले पढ़ा था शायद इसको, भवन वासियों में और सामान्य में उत्पन्न होने वाले वो पुंडरिक, और जो विशेष जो इंद्रादि है और ऊपर के जो है उसमें उत्पन्न होने वाले उसको महापुंडरिक संबंधी कहा था। अब निषिद्धि का प्रकीर्णक 14वें नंबर का, नाना भेद रूप प्रायश्चित्त विधि का वर्णन करता है। ये पहले भी एक प्रायश्चित्त वाली बात आई थी कल्पे व्यवहार में, उसमें तो करने योग्य व्यवहार है उससे स्खलित होने पर प्रायश्चित होता है उसको बताया था। ये निषिद्धि का जो है वो भेद रूप प्रायश्चित्त विधि का वर्णन करता है, जिसलिए प्रकीर्णक इस प्रकार की विधि का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए इन अंग बाह्य प्रकीर्णकों का वक्तव्य स्व समय ही है, क्योंकि ये सब जिनमत के अनुसार ही ये सारी बातें होती है, तो इसलिए इसको स्व समय वक्तव्य कहा था। अर्थात इन प्रकीर्णकों में स्व समय का ही वर्णन रहता है, यानी जिनमत के अनुसार जो मुनियों के या अन्य भी जो आचार है उसी का इसमें वर्णन होता है। जिसलिए चूंकि हिंदी में चूंकि कहते हैं, जिस कारण ऐसा है उस कारण उसको स्व समय वक्तव्य कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, निजात्मा की यहाँ बात ही नहीं है, स्व समय ने निजनमत की ही बात है, क्योंकि वक्तव्यता बताया था ना, स्व समय वक्तव्यता और परसमय वक्तव्यता, उसमें स्व समय ने जिनमत के अनुसार कथन करना उसको स्व समय वक्तव्यता कहता, और अन्य मतों का स्वरूप बताकर उसका निराकरण करना उसको परसमय वक्तव्यता के। 12 अंगों में तो दोनों प्रकार पाए जाते हैं, परंतु ये 14 प्रकीर्णकों में स्व समय वक्तव्यता ही है। हाँ, समय सार वाला स्व समय परसमय यहाँ नहीं है। देखो पहले 6 तो हमने देखे थे, फिर दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प्य व्यवहार, कल्प्याकल्प्य, महाकल्प्य, पुंडरिक, महापुंडरिक, उसके बाद निषिद्धिका। अब अंग प्रविष्ट, ये हमने अभी देखे 14, वो अंग बाह्य हो गए। अब अंग प्रविष्ट है ने जो 12 अंग जिसको कहते हैं, अंग प्रविष्ट है अंगों में जो अंतर्भूत है उसको अंग प्रविष्ट कहेंगे। अंग प्रविष्ट 12 भेदों में से, अंग प्रविष्ट के 12 भेदों में से, यानी जिसको हम 12 अंग कहते हैं, द्वादशांग, आचारांग, ये पहला आचारांग, यत्न पूर्वक चलना चाहिए, यत्न पूर्वक खड़े रहना चाहिए, यत्न से बैठना चाहिए, यत्न पूर्वक शयन करना चाहिए, यत्न पूर्वक भोजन करना चाहिए, यत्न पूर्वक संभाषण करना चाहिए, इस प्रकार आचरण करने से पाप कर्म का बंधन नहीं होता, श्लोक रहना पड़ेंगे, इत्यादि रूप से मुनियों के आचार का वर्णन करता है। यत्न पूर्वक कहने अकेला लक्ष्य पूर्वक नहीं, कौन सा लक्ष्य, उसमें एक तो हिंसा नहीं होनी चाहिए, दूसरों का मन भी नहीं दुखाना, ये सभी है ना, जिसको कहते हैं ना प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपण हिंसा, प्रमाद से जो कोई प्रवृत्ति होती है तो वहां कहते हैं सावधानी पूर्वक। सावधानी किसमें रखना है, यत्न पूर्वक चलना चाहिए नहीं, लक्ष्य पूर्वक चलना चाहिए, किसका लक्ष्य रखना है, अपना के बाजू वाले का, तो अपने चलने में किसी हिंसा तो नहीं होती है ना, ये इसको यत्न पूर्वक कहते हैं। जैसे पुस्तक के पन्ने उल्टाना है तो उनके भी पहले पीछे से परिमार्जन करके फिर वो पलटाते। हमने ये ऊपर का श्लोक नहीं पढ़ा था, उसको पढ़ी। जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम सहे जदम भुज्जे ज भासे ज एवं पावम न बच्छई। जदम यानी यत्न पूर्वक, चरे यानी चलना, चिट्ठे जदम आसे आसन आसन करना ग्रहण करना, जदम सहे शयन करना, जदम भुज्जे ज भोजन करना, भासे ज यानी संभाषण करना वगैरह वगैरह। ये पहला आचारांग हुआ। दूसरे का नाम है सूत्र कृतांग। तो सूत्रकृत नाम का अंग, स्व समय और पर समय का तथा स्त्री संबंधी परिणाम क्लीवता अस्फुटत्व अर्थात मन की बातों को स्पष्ट न कहना, काम का आवेश विलास आस्फालन सुख और पुरुष की इच्छा करना आदि स्त्री के लक्षणों का प्ररूपण करता है। स्व समय पर समय उसमें ये भी बातें सब बता चुके, उसमें सूत्र कृत नाम का जो अंग है उसमें इतने सारे विषयों का वर्णन है। आस्फालन का शब्दशः अर्थ मालूम नहीं है, यहाँ प्राकृत की डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा। क्लीबता यानी नपुसकत्व, वही वो अस्फुटत्व यानी मन की स्पष्ट न कहना, वो अस्फुट स्फुट यानी स्पष्ट और अस्फुट यानी हाँ मायाचारी, अंदर एक बाहर एक। ये प्रवचन सार में भी आता है ना, अरिहंत की क्रिया कैसी उदय की, जैसे स्त्रियों के मायाचारी सहज होती है। अब आगे स्थानांग तीन नंबर का, पहला आचारांग, दूसरा सूत्रकृतांग, तीसरा स्थानांग। जीव और पुद्गलादि के एक से लेकर एकोत्तर क्रम से, एक से लेकर एकोत्तर यानी एक से लेकर एक से बढ़ते हुए यानी एक दो तीन आदि क्रम से स्थानों का वर्णन करता है। यथा महात्मा अर्थात यह जीव द्रव्य, इस जीव द्रव्य को ही महात्मा कहा गया, महत आत्मा महात्मा। निरंतर चैतन्य रूप धर्म से अन्वित होने के कारण उसकी अपेक्षा एक प्रकार का कहा गया है। चैतन्य रूप धर्म की अपेक्षा से जीव कितने हैं, एक प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, जीव भले अनंत है, चैतन्य धर्म की अपेक्षा उपयोग लक्षण की अपेक्षा क्या कहेंगे, एक प्रकार का है जीव। जीव और पुद्गल, पुद्गल भी एक परमाणु को एक कहेंगे। जीव और पुद्गल आदि सभी में बताएंगे, उनके जो धर्मों की अपेक्षा से जो कोई वर्णन है उसकी बात करेंगे। देखो उपयोग और लक्षण, चैतन्य उपयोग की अपेक्षा हम कहेंगे एक प्रकार के, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना के भेद से दो प्रकार का कहा गया है। ये चेतना के दो भेद कहेंगे तो जीव दो प्रकार के हो जाएंगे, अथवा भव्य और अभव्य भेद से दो प्रकार का कहा गया है। अब तीन, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना, इन तीन लक्षणों से युक्त होने के कारण तीन भेद रूप कहा गया है। अब उसमें और भी हम भेद कर सकते हैं, उत्पाद भेद द्रव्यता की अपेक्षा भी तीन भेद हो जाएंगे, अथवा उत्पाद व्यय और द्रव्य के भेद से तीन प्रकार का कहा गया है। कर्मों की परवशता से चार गतियों में परिभ्रमण करता है, इस कारण चार प्रकार का कहा गया है। इसमें अन्य अन्य अपेक्षा भी बहुत सारे लगा सकते हैं हम, चार प्रकार के हैं।
हाँ सम्यक ज्ञान चंद्रिका में भी हमने देखे थे। हाँ 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 दो श्लोकों का वर्णन चल रहा है। ये ऐसा भी कर सकते हैं ना, पांच क्या है अभी यहाँ तो जीव पांच प्रकार के लिए, अभी पांच क्या क्या है बोलो। हाँ पांच समुआ है, पांच परमेष्ठी है, पहले उनको लेंगे। हाँ पांच महाव्रत है, पांच इंद्रिय है, पांच अनुव्रत है, हाँ पांच पाप है और पांच मेरु है। अच्छा पांच अस्थिकाय है, पांच विनय है, पांच भाव है, पंच परावर्तन है। हाँ हाँ मैंने तो ऐसे 50-60 निकाले थे डिस्पेंसर में बैठे बैठे ऐसे। हाँ ये सब सबके ऐसे निकाले थे मैंने तो, ऐसे चार क्या है, छह क्या है। हाँ यहाँ तो अलग प्रकार से जीवों के प्रकार पांच प्रकार से ऐसे, या ऐसे भी कहते हैं एक क्या है तो एक आत्मा है, दो क्या है ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग दो है, तीन क्या है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तीन है। ये मुना ने उसके बच्चों से पाठ याद किया था, पाठशाला चलाती है ना। हाँ तो तीन तीन चार चार साल के बच्चे भी ये सब, ये पूरा यानी आठ क्या है, आठ कर्मों के नाम पूरे स्पष्ट बताएंगे। नौ क्या है, दस क्या है, पूरे दस धर्म के नाम, ग्यारह उषाव की ग्यारह प्रतिमाएं, एक एक प्रतिमा के नाम स्पष्ट बताएंगे। हाँ बारह व्रतों के नाम बताएंगे, बारह भावनाओं के नाम बताएंगे, तेरह प्रकार का चारित्र है, चौदह गुणस्थान चौदह मार्गणास्थान मार्गणाएं, पंद्रह प्रकार के प्रमाद, ये सब उसमें आते हैं। ये आपकी चारू बहन ने भी पूछा था ना, पंद्रह क्या है मुझे याद नहीं, उनको ये आइडिया बहुत अच्छी लगी थी, ये दलस में है ना। हाँ उन्होंने किया था, उन्होंने फोन पर पूछा था पंद्रह क्या है मुझे याद नहीं आ रहे, मैंने बोला पंद्रह प्रकार के ये प्रमाद है, विकथा कषाय इंद्रिया आदि। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं ना, षोडश क्या है, सोलह क्या है, सोलह भावना है, ऐसे बढ़ाते जाओ जो हम उसमें भेद कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे देखो, औपशमिक क्षायिक क्षायोपशमिक औदयिक और पारिणामिक, ये पांच प्रमुख धर्म ही उसके प्रधान गुण है, अतः वह पांच प्रकार का कहा गया है, जीवों को ही पांच प्रकार का कहा गया है। भवांतर में संक्रमण के समय यानी एक भव से दूसरे भव में जाता है जीव मरकर विग्रह गति में गमन करता है, तो छह ही दिशाओं में गमन होता है उसका, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर और नीचे, विदिशाओं में टेढ़ा ऐसा नहीं जाता या सर्कल में नहीं जाता, सीधी लाइन में और ये छह दिशाओं में ही जाएगा। इस प्रकार छह दिशाओं में गमन करता है, अतः छह प्रकार का कहा गया है। स्याद अस्ति स्याद नास्ति इत्यादि सात भंगों से युक्त होने की अपेक्षा सात प्रकार का कहा गया है, ये सप्तभंगी यहाँ पर लगाए। ज्ञानावरणादि आठ प्रकार के कर्मों के आश्रव से युक्त होने की अपेक्षा आठ प्रकार का कहा गया है। जीवादि नौ प्रकार के पदार्थों रूप परिणमन करने वाला होने की अपेक्षा, जब हम नौ पदार्थ कहते हैं तो पर्याय की अपेक्षा नौ पदार्थ कहते हैं, और जब हम सात तत्व कहते हैं तो जीव और अजीव के तो द्रव्य रूप लेते हैं और पांच पर्याय रूप में कर्म की और जीव की, इस तरह से डिवाइड करते हैं, इसलिए नौ में वो पर्याय रूप लिए सारे। क्या लिखा देखो, जीवादि नौ प्रकार के पदार्थों रूप परिणमन करने वाला होने की अपेक्षा नौ प्रकार का कहा गया है, यानी जीवादि पदार्थ वो नौ लेना। अब दस स्थान कैसे है, पृथ्वीकायिक जलकायिक अग्निकायिक वायुकायिक प्रत्येक वनस्पति कायिक साधारण वनस्पति कायिक, यानी ये पांच स्थावरों में छह भेद किए, द्विंद्रिय जाति तीन्द्रिय जाति चतुरिंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति के भेद से दस स्थानगत होने से दस प्रकार का कहा गया है। इसके हमने श्लोक गाथाएं नहीं पढ़ी थी, हम पढ़ेंगे अभी। देखो ये जीव समास में भी हमने इस प्रकार से भेद देखे थे, ग्यारह इसमें अगर ग्यारह करना है तो ये जो विकलेंद्रिय लेते उसको अलग अलग तरीके से पंचेंद्रिय के बदले संज्ञा असंज्ञा करेंगे तो और एक बढ़ जाएगा, फिर और एक बढ़ाना है, तो इस तरह से वो एक इंद्रियों के और भेद बढ़ाते जाएंगे। इसे 11, 12, 13, 14 ऐसे 19 तक भी उन्होंने बताए थे। और फिर उसके पर्याप्त लब्धिया पर्याप्त निवृत्तिया पर्याप्त करके उससे और एक 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 से बढ़ाते हुए सारा वर्णन किया था। ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका में भी हमने इसको पढ़ा था। देखो हम यहाँ पहले गाथा पढ़ते हैं। आपका प्रश्न है उसी को स्थान कहते हैं, जीवों के स्थान भेद किस अपेक्षा बताकर जीवों के स्थान। हमने जो याद किया था ना, एक क्या है दो क्या है वो अलग बात है, यहाँ जीव ही एक प्रकार का, जीव ही दो प्रकार के, पुद्गलों की बात अलग से बताएंगे। पुद्गल एक प्रकार का कैसा होगा, एक परमाणु को एक प्रकार का कहेंगे, द्विप्रदेशी का वो दो प्रकार का हो जाएगा, उसमें भी सप्तभंग लगेंगे, उसमें भी अन्य अन्य बातें लगेंगी, तो पुद्गल को भी अलग प्रकार का सिद्ध करेंगे। यहाँ जीवों की बात यहाँ बताई है मुख्यता से, जीवादि में अन्य द्रव्यों पर भी घटित करके दिखाएंगे, इसीलिए उसको स्थानांग कहा। स्थान बताए यानी उसके भेद अलग अलग बताए। जीव ही एक प्रकार का किस अपेक्षा से, तो चैतन्य उपयोग की अपेक्षा एक प्रकार का, ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग की अपेक्षा से दो प्रकार का। इस तरह से जीव ही एक प्रकार का, जीव ही दो प्रकार के, जीव तीन प्रकार के, जीव चार प्रकार के, पांच भावों की अपेक्षा पांच प्रकार के, इस तरह से जीव पर घटाया है। ऐसे पुद्गल वगैरह की भी बात यहाँ बताई है, क्योंकि पूरा इतना बड़ा अंग है उसमें तो सब विस्तार से वर्णन है। उसमें क्या हो सकता है इसकी झलक हमें बताई है, 10 तक ही गिना यहाँ पर का। हम अभी 64 और 65 नंबर की गाथा पढ़ेंगे, जिसका अर्थ हमने पहले पढ़ लिया है। एको चेव महप्पा सो दुवी अपो तिलखणो भणिदो चदुसंकमणा जुत्तो पंचग गुणपहाणो य छक्का पक्कम जुत्तो उवगुत्तो सत्तभंगि सभाओ अठासवोणवठो जीवो दसठानियो भणियो। यहाँ तो बस एक एक स्थान बताए, उसकी अपेक्षा अभी हमको खोलकर बता दी। अब समवाय नाम का जो अंग है, समवायांग, ये 4 नंबर का। पहला कौन सा देखा हमने, आचारांग, फिर सूत्रकृतांग, स्थानांग, अभी चौथा समवायांग। ये अंगों के विषय का ज्ञान भले न हो, उसके नाम तो याद करें हम। समवाय नाम का अंग द्रव्य क्षेत्र काल और भावों के समवाय का वर्णन करता है। समवाय कहने समानता, उसमें जो है उसका वर्णन होगा। उनमें से पहले द्रव्य समवाय का कथन करते हैं, वह इस प्रकार है। धर्मास्तिकाएं अधर्मास्तिकाएं लोकाकाश और एक जीव के प्रदेश परस्पर समान है। कितने हैं? असंख्यात प्रदेश ही, वो असंख्यात का प्रमाण है, लोक में जितने प्रदेश है। शंका, प्रदेशों को द्रव्यपना कैसे सिद्ध हो सकता है? नहीं, क्योंकि पर्यायार्थिक ने का अवलंबन करने पर प्रदेशों के भी द्रव्यत्व की सिद्धि हो जाती है। प्रदेश भेद पर्यायार्थिक नय की मुख्यता से स्वीकार किया जाता है। क्या कहते हैं, एक जो द्रव्य है उसके जो प्रदेश है उसमें तो टुकड़े है ही नहीं है, ये तो भेद कल्पना की जाती है। उसको व्यवहार से, व्यवहार नय से या द्रव्य पर्यायार्थिक नय से उसमें हम जो कितने प्रदेशी है ऐसा गिनते हैं, तो हम कहते हैं असंख्यात प्रदेशी है। उस अपेक्षा से उसमें उसको द्रव्य प्रमाण बताया। इसलिए पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करके प्रदेश में द्रव्यत्व की सिद्धि की है। अभी क्षेत्र समवाय कहेंगे। प्रथम नरक का पहला इंद्रक सीमंतक बिल, पहले नरक का सीमंतक यानी सेंटर वाला। मानुष क्षेत्र कितना होगा? 45 लाख योजन। सौधर्म कल्प का पहला इंद्रक, पहला का अर्थ होता है सेंटर का, इंद्रक ही उसको कहते हैं जो सेंटर में होता है, तो पहला इंद्रक उसका नाम है रुजु विमान। और सिद्ध लोग ये चारों क्षेत्र की अपेक्षा सदृश है, यह क्षेत्र समवाय है। जैसे जम्बूद्वीप कितना है, 1,00,000 योजन, और अंतिम जो नरक, सातवें नरक का सेंटर का बिल, वो भी 1,00,000 योजन, और सौधर्म ये जो हाँ सर्वार सिद्धि, वो भी 1,00,000 योजन। ये क्षेत्र समवाय कहलाएंगे। विशेषार्थ, पहले नरक के, पहले पाथड़े के, पाथड़ा यानी पटल, वो नरक तो एक है परंतु उसके अलग अलग लेवल में पाथड़े कहेंगे हम इसको, तो उसका ऊपर का पाथड़ा उसको पहला पाथड़ा कहेंगे। नरक में पहला पाथड़ा ऊपर का पहला कहलाएंगे और अंत का नीचे वाला कहेंगे, और स्वर्ग में पहला नीचे वाला पहला होगा और ऊपर ऊपर के बाद में। पहले पाथड़े के इंद्रक बिल का, इंद्रक बिल का अर्थ होता है, इंद्रक कहते हैं सेंटर वाले को, इंद्रक कहते हैं। और कैसे कैसे बिल होते हैं नाम मालूम है आपको? एक होते इंद्रक बिल जो सबसे सेंटर में होते हैं, श्रेणीबद्ध पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर या विदिशा में होते हैं, एक लाइन में, उसको कहते हैं श्रेणीबद्ध। और इन इनके बीचों बीच एट रैंडम जो अन्य होते उसको कहते हैं प्रकीर्णक। ये इंद्र बिलों की बात है, स्वर्गों के विमान भी ऐसे ही कहलाते हैं। सेंटर का जो विमान है उसको इंद्रक विमान कहेंगे, और फिर श्रेणीबद्ध पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर में श्रेणीबद्ध कहेंगे, और बीचों बीच अन्य जो होते उसको प्रकीर्णक कहेंगे। ये सीमन तक का हमने पढ़ लिया। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी द्वीप, खंड द्वीप, कालोदक समुद्र और मानुषोत्तर पर्वत के इस ओर का आधा, इस ओर का नहीं अंदर का, पुष्करवर द्वीप, यह सब मिलकर मानुष क्षेत्र है, जिसको हम ढाई द्वीप कहते हैं। ढाई द्वीप जब कहते हैं तो उसके बीच में जो सागर है उनको भी लेना। कौन से सागर है? लवण समुद्र और कालोदी समुद्र मानुष क्षेत्र है, क्योंकि मनुष्य इतने क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। सौधर्म स्वर्ग के पहले पटल के प्रथम इंद्रक विमान का नाम रुजु विमान है, तथा जहां लोक के अग्रभाग में सिद्ध जीव निवास करते हैं उसे सिद्धि क्षेत्र कहते हैं। पूर्वोक्त इन चारों स्थानों का व्यास, व्यास यानी डायमीटर 4,500,000 योजन है, इसलिए ये चारों क्षेत्र की अपेक्षा समान है, यानी विस्तार उनका सबका समान है। अब काल समवाय की बात करेंगे। समय, आवली, क्षण, लव, मुहूर्त, दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, युग, पूर्व, पर्व, पल्योपम, सागरोपम, शम हुआ है, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी, ये प्रत्येक परस्पर में समान है। नहीं समझे? एक समय दूसरे समय के समान है, एक आवली दूसरे आवली के समान है। यानी जब आवली कहेंगे कभी भी तो वो समान, उसका प्रमाण निश्चित है। आपको मालूम है एक आवली में कितने समय होते हैं, कौन से असंख्यात? अभी केवल असंख्यात, हाँ बहुत अच्छा, जघन्य युक्ता संख्यात। ये जघन्य युक्ता संख्यात कैसे तैयार होता मालूम है? जघन्य परिता, हाँ, जघन्य परिता संख्यात को उतनी ही बार आपस में गुणा करो, रेस टू जघन्य परिता संख्यात, वो जघन्य युक्ता संख्यात हो जाएगा। और जघन्य असंख्याता संख्यात कैसे निकालना? हाँ, जघन्य युक्ता संख्यात का वर्ग करो एक बार, बस स्क्वायर करो, जघन्य युक्ता संख्यात गुणा जघन्य युक्ता संख्यात, वहां रेस टू नहीं करना, रेस टू टू हो जाएगा। पहले हमने जघन्य परिता संख्यात रेस टू जघन्य परिता संख्यात किया था, तभी जघन्य युक्ता संख्यात हुआ था। अब जघन्य युक्ता संख्यात का वर्ग करो, रेस टू टू करो, तब जघन्य असंख्याता संख्यात हो जाएगा। ये अपने यहाँ 14 धाराएं ली थी हमने, ये गणित का प्रकरण लिया था ना उसमें। हाँ, देखो क्या कहते, यहाँ क्या कहना चाहते, जो काल है हमारी भाषा में कहेंगे एक सेकंड इज इक्वल टू एक सेकंड, तो समझ में जल्दी आता है ना, आवली क्षण लव वगैरह वगैरह, ये परस्पर में समान है। अर्थात एक समय दूसरे समय के समान है, एक आवली दूसरी आवली के समान है, इसी तरह आगे भी समझ लेना चाहिए। एक अवसर्पिणी दूसरे अवसर्पिणी के समान है, एक उत्सर्पिणी दूसरे उत्सर्पिणी के समान है, या अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी भी समान कहेंगे काल की अपेक्षा। कितनी समानता क्या है उसमें, 10 कोड़ा कोड़ी सागर, हाँ वर्ष। केवल ज्ञान आप कहते दिन तो छोटे बड़े होता है, जब दिवस कहते हैं तो अहो और निश मिलकर, दिन और रात्रि मिलकर वो एक दिवस बताया, क्योंकि दिन और रात का परिणाम तो परिमाण चेंज होता है ना, कभी दिन बड़ा होता है कभी छोटा होता है, इसलिए वो पूछ रहे हैं कि दिवस एक दूसरे के समान कैसे हो सकता है। तो 24 घंटे का जो हम गिनेंगे उसको पूरा एक दिवस कहेंगे, मास भी एक महीना पूरा। हाँ, मास में देखो चैत्र मास, चैत्र मास के अभी उसमें तिथि का क्षय वगैरह वो बात आप पूछ रही है, किंतु यहाँ एक महीना है। हाँ, केवल ज्ञान केवल दर्शन के बराबर है, ये भाव समवाय है, उसके अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा समानता बताई है। हाँ, अब ये तो हो गया अपना समवाय नाम का अंग हो गया, व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम का अंग, ये कितने नंबर का चल रहेगा, पांचवा। क्या जीव है क्या जीव नहीं है इत्यादि रूप से 60,000 प्रश्नों के उत्तरों का तथा 96,000 छिन्न छेदों से ज्ञापनीय शुभ और अशुभ का वर्णन करता है, ये निमित्त ज्ञान। ज्ञापनीय जो जाने जाते हैं छिन्न छेद से, यानी जैसे भी आपके कपड़ा फटा है तो उसके ऊपर से जो कुछ निमित्त ज्ञान वगैरह करेंगे वो छिन्न छाप ऐसा है, आता है ना उसमें, हमने देखा था। हाँ, शुभ और अशुभ का वर्णन करता है, ये भूमि आदि के द्वारा भी वो जो कुछ बातें बताई जाती है निमित्त ज्ञान जिसको कहते। हाँ, अरविंद भाई कहते हैं ये चांद के आजू बाजू ऐसा मंडल आता है ना, जिसको मराठी में उसको खड़ कहते हैं, तो उसका फल क्या है वो बता देते हैं। ये तो श्रुत ज्ञान की, ये तो श्रुत ज्ञान की बात है, परंतु ये ऐसे निमित्त ज्ञान ही होते हैं, यानी पृथ्वी की ओर देखकर, आकाश की ओर देखकर, मेघों की ओर देखकर, हवा कैसी चल रही उसकी ओर देखकर, ये उनके निमित्त ज्ञान की बातें बताई जाती हैं। इसका वर्णन इस व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग में आता है। स्थान समवाय की आप बात कर रहे हैं कि स्थानांक की कर रहे हैं? स्थान में हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्थान देखे थे, और अभी हमने जो देखा था वो समवाय अंग देखा। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल पहले ही बताया, द्रव्य की बात पहले ही बता चुके, वहां प्रदेशों की समानता की बात देखी थी हमने, किसके प्रदेश समान है, जीव के प्रदेश, धर्म के प्रदेश, अधर्म के प्रदेश, लोकाकाश के प्रदेश, उसमें द्रव्य समवाय कहा था। अब छठे नंबर का नाथ धर्म कथा नाम का अंग तीर्थंकरों की धर्म कथाओं के स्वरूप का वर्णन कथा करता है। शंका, तीर्थंकर धर्म कथाओं के स्वरूप का कथन किसके द्वारा करते हैं? तीर्थंकर धर्म कथाओं के स्वरूप का कथन दिव्य ध्वनि के द्वारा करते हैं। वह दिव्य ध्वनि कैसी होती है, अर्थात उसका क्या स्वरूप है? समाधान, वह सर्वभाषामयी है। एक ही ध्वनि ऐसा है कि उस वो सर्व भाषामयी है, मय है ने, उसमें से जीव समझते हैं, उसमें है तभी समझते हैं ना। हम क्या कहते हैं, 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में अपने अपने भाषा में जीव समझ जाते हैं, तो उस ध्वनि में ऐसी बातें है कुछ अद्वितीय अद्भुत कि उसको सुनकर अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं। उसमें नहीं होता तो कैसे समझते, हमेशा कि वो ट्रांसलेट करके समझते होंगे, तो उसमें अगर बात ऐसी नहीं है तो कैसे। क्योंकि हमने पहले देखा था कि जो गणधर का जीव है उनमें तो वो सभी भाषाएं सभी रूप से भिन्न भिन्न समझने की ताकत है, एट अ टाइम, एक समय में वो जो कुछ उनका ज्ञान की योग्यता जो चलती है क्षोभ्रम की उस अनुसार, एट अ टाइम। देखो वो सर्व भाषामयी है, अक्षर अनक्षरात्मक है, उसका अर्थ क्या है, अक्षरात्मक क्यों कहा, हम तो अभी तक बताए कि अनक्षरात्मक होती है, वो है तो निरक्षर, और जब श्रोता सुनते हैं तो उनको वो अक्षरात्मक भाषा में समझ में आती है, अपने अपने सर्व भाषामय कहा ना, सर्व भाषामय होते हुए भी निरक्षरी है, नहीं समझे। अनक्षरी और निरक्षरी एक ही बात है, जिसमें अनंत पदार्थ समाविष्ट है, अर्थात जो अनंत पदार्थों का वर्णन करती है, ऐसे बीज पदों से जिसका शरीर गढ़ा गया है, यानी ये ध्वनि कैसे है, बीज पदों से युक्त है, वो बीज पद सुनकर गणधरों को वो इतना सारा द्वादशांग संबंधी ज्ञान हो जाता है, जिसका यानी ये दिव्य ध्वनि का यह वर्णन चल रहा है, जिसका शरीर यानी वो ध्वनि काय से बनी है, तो बीज पदों से, जो प्रातः, ये तीन कौन से संधिकाल आपको समझना था ना, प्रातः मध्यान्ह और सायंकाल, इन तीन संध्याओं में ये स के ऊपर बिंदी नहीं चाहिए क्योंकि आगे आधा न आ गया है, तीन संध्याओं में छह छह घड़ी तक, और कैसी निरंतर छह घड़ी तक निरंतर चलेगी, खिरती रहती है, यानी प्रतिदिन तीन बार प्रातः काल में मध्यान्ह काल में सायंकाल में, कितनी छह छह घड़ी, हाँ 24 मिनट की एक घड़ी, और उक्त समय को छोड़कर इतर समय में अन्य समयों में भी किसके निमित्त से, गणधर देव के संशय विपर्य और अनद्यवसाय भाव को प्राप्त होने पर उनके प्रति प्रवृत्ति करना, अर्थात उनके संशय आदि को दूर करना जिसका स्वभाव है, तो क्या वो संशय विपर्य अनद्यवसाय मिथ्या ज्ञान हो जाता है, नहीं। यानी उनके कोई प्रश्न होने पर, जैसे यहाँ तो गणधर लिखा है परंतु चक्रवर्ती के लिए भी, इंद्र चक्रवर्ती और गणधर इनके निमित्त से रात्रि में भी खिरती है, संकर और व्यतिकर दोषों से रहित होने के कारण, अभी और एक उसका, पहले तो बीज पद बताया, फिर छह छह घड़ी तक खिरती है वो भी बताया, और इतर समय में भी खिरती है वो भी बता दिया। अब कहते हैं संकर और व्यतिकर दोषों से रहित होने के कारण, इस ध्वनि में ये कोई दोष नहीं है। संकर का अर्थ क्या है और व्यतिकर का क्या अर्थ होता है, हाँ मिक्स हो जाना, और व्यतिकर है बिल्कुल विरोध वाली, हाँ विपरीत। इन दोषों से रहित होने के कारण जिसका स्वरूप विशद है, विशद यानी स्पष्ट है, यानी उसको सुनकर कोई संभ्रम पैदा हो ऐसी बात हो ही नहीं सकती है, और 19 धर्मकथाओं का प्रतिपादन करना, यानी 19 अध्ययनों के द्वारा धर्म कथाओं का प्रतिपादन करना जिसका स्वभाव है, इस प्रकार के स्वभाव वाली दिव्य ध्वनि समझना चाहिए। विशेषार्थ। शंकर यानी मिला देना, यानी एक दूसरे में ऐसा मिक्स कर देना। हाँ, ये दोष है, संकर और व्यतिकर दोष। हाँ, अभी ये विशेषार्थ में फिर दोबारा उसका वर्णन करेंगे। देखो, विशेषार्थ दिव्य ध्वनि के विषय में उसका स्वरूप, उसके खिरने का काल और वह किस निमित्त से खिरती है, इन तीन बातों का विचार करना आवश्यक है। एक, मूल में यद्यपि यह बतलाया है कि दिव्य ध्वनि अक्षर और अनक्षरात्मक होती है तथा वह अनंतार्थ गर्भ बीज पद रूप होती है। क्या कहते हैं? अनंत अर्थ जिसमें गर्भित है, ऐसे जो बीज पद है उस बीज पद में वो होती है। यानी दिव्य ध्वनि में बीज पद होते हैं और एक एक बीज पद में अनंत अर्थ भरा हुआ है। षटखंडागम के वेदना खंड की टीका करते हुए वीरसेन स्वामी ने दिव्य ध्वनि के स्वरूप पर अधिक प्रकाश डाला है। वहां एक शंका इस प्रकार उठाई गई है कि वचन के बिना अर्थ का कथन करना संभव नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म पदार्थों की संज्ञा किए बिना, यानी उसको कुछ नाम रखे बिना, पहले पदार्थों का नाम बताएंगे फिर वर्णन करेंगे, तो उसको किए बिना उनका प्रतिपादन करना नहीं बन सकता। यदि कहा जाए कि अनक्षर ध्वनि से भी अर्थ का कथन करना संभव है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि अनक्षर भाषा तिर्यंचों के तीर्थ हुआ है, तिर्यंचों के पाई जाती है, उसके द्वारा दूसरों को अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है, तथा दिव्य ध्वनि अनक्षरात्मक ही होती है यह कहना भी ठीक नहीं, यानी सर्वथा अनक्षरात्मक होती है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह 18 भाषा और 700 कुभाषा रूप होती है। कुभाषा यानी लघु भाषा जिसको कहा, इसलिए अर्थ रूपक तीर्थंकर देव भी ग्रंथ प्ररूपक गणधर के समान ही हो जाते हैं, उनका अलग से प्ररूपण नहीं करना चाहिए, ऐसी शंका किसी ने उठाई है। अर्थात यानी पहले कहा था ना, कौन सी शंका? अनक्षरात्मक ही है, इसके लिए उत्तर दिया उन्होंने कि अनक्षरात्मक ही है ऐसा नहीं कह सकते, यानी वो अर्थ रूपक है, अर्थ प्ररूपक है। अर्थात अभी इसी अर्थ को इसको फिर दृढ़ करते, जिस प्रकार गणधर देव अक्षरात्मक भाषा का उपयोग करते हैं उसी प्रकार तीर्थंकर देव भी, अतः अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता ये दो अलग अलग नहीं कहे जा सकते। यानी जैसे गणधर देव अक्षरात्मक भाषा का उपयोग करते हैं, वो तीर्थंकर देव भी अक्षरात्मक, सर्वथा अनक्षरात्मक नहीं कहेंगे, अक्षरात्मक भी होती है ऐसा कहेंगे, इसलिए उनको अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता ऐसे दोनों ही नाम से, जो एक ही है, बताया जाता है। इसका जो समाधान किया गया है वह इस प्रकार है, जिनमें शब्द रचना संक्षिप्त होती है, ये बीज पद का परिभाषा बता रहे हैं कि जिनमें शब्द रचना संक्षिप्त होती है और जो अनंत पदार्थों के ज्ञान के कारणभूत अनेक लिंगों से संगत होते, लिंग यानी उनके चिन्ह, उन्हें बीज पद कहते हैं। तीर्थंकर देव 18 भाषा और 700 कुभाषा रूप इन बीज पदों के द्वारा द्वादशांग का उपदेश देते हैं। ये द्वांद हुआ है, द्वादशांग का उपदेश देते हैं, इसलिए वे अर्थकर्ता कहे जाते हैं, तथा गणधर देव उन बीज पदों के अर्थ का व्याख्यान करते हैं। गंधर्व देवों की बुद्धि ऐसी कि वो बीज बुद्धि कहलाती ना, उन बीज पदों के द्वारा उनको ज्ञान होता है सारा, वो निमित्त है, ज्ञान तो अपने से होता है, फिर भी उसका जो प्रतिपादन करते हैं तो व्याख्यान करते हैं, इसलिए वे ग्रंथकर्ता कहे जाते हैं। तात्पर्य यह है कि तीर्थंकर देव अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा पदार्थों का साक्षात्कार करके, यानी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानकर बीज पदों के द्वारा उनका कथन करते हैं, ग्रंथ रूप से उन्हें निबद्ध नहीं करते हैं, इसलिए अर्थकर्ता कहे जाते हैं। हाँ हाँ, फिर से हाँ, समोसर में इतने जीव जाते हैं। हाँ देखो, दिव्य ध्वनि खिरती है तो सभी जीवों को कितना अर्थभाषित होता है अपने अपने ज्ञान की योग्यता से। गणधर देवों को वो पूरा द्वादशांग का ज्ञान, क्योंकि उनके जो बीज बुद्धि आदि जो बुद्धि रिद्धियां वगैरह सभी प्रकट हुई है, उसके कारण उनको मैक्सिमम पॉसिबल उसमें से ग्रहण हो जाता है। दिव्य ध्वनि में आता है उसका अनंत वा भाग वे ग्रहण करते, ऐसा आता है ना। इसलिए यहां तीर्थंकर को अर्थकर्ता कहा और गणधर को ग्रंथकर्ता। तथा गणधर देव उन बीज पदों और उनके अर्थ का अवधारण करके, अवधारण करने ने जानना, उनका ग्रंथ रूप से व्याख्यान करते हैं, इसलिए वे ग्रंथकर्ता कहे जाते हैं। महापुराण मिला ना, कहां पढ़ रहे? महापुराण, हरिवंश पुराण, जीव कांड की संस्कृत टीका आदि ग्रंथों में भी इसके स्वरूप पर भिन्न भिन्न प्रकाश डाला गया है। जीव कांड के टीकाकार ने लिखा है कि दिव्य ध्वनि जब तक श्रोता के श्रोत्र प्रदेश को नहीं प्राप्त होती है, तब तक वह अनक्षरात्मक रहती है। हरिवंश के तीसरे सर्ग के श्लोक 16 और 38 में इसके दो भेद कर दिए हैं, दिव्य ध्वनि और सर्वार्ध मागधी भाषा। उनमें से दिव्य ध्वनि को प्रातिहारियों में और सर्वार्ध मागधी भाषा को देवकृत अतिशयों में गिनाया है। यानी दिव्य ध्वनि तो उसके प्रातिहार्य में आ जाती है और सर्वार्ध मागधी भाषा को वो देवकृत कहने में आते हैं। मगध नाम के देव के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए उसको देवकृत, इसलिए उसको मागधी कहते हैं। धर्म शर्मा अभ्युदय के, ये धर्म हुआ, धर्म करना उसको। ये शर्म का अर्थ क्या है? धर्म का तो अर्थ हम जानते हैं, शर्म का अर्थ मालूम है? बोलो, आपके बहन का लड़का है ना शर्मन, नाम क्यों रखा शर्मन? किसी ने सजेस्ट किया इसलिए। अरे पर क्यों अमल पाले करने क्यों बताया? शर्म का अर्थ होता है सुख। तो धर्म शर्म अभ्युदय, अभ्युदय यानी उसकी जो प्राप्ति, जो उत्थान है। सर्ग 21 श्लोक 5 में दिव्य ध्वनि को वर्ण विन्यास से रहित बतलाया है। वर्ण यानी वो अक्षरात्मक नहीं है। वर्ण विन्यास का अर्थ क्या है? अक्षर विन्यास, अक्षरों की जो कोई रचना है उससे रहित। चंद्र प्रभचरित के सर्ग 18 श्लोक 1, देखो ये विशेषार्थ लिखने वालों के कितना अभ्यास है और कहाँ कहाँ के उन्होंने उद्धरण दिए सारे, और हमको तो पढ़ने के लिए भी कंटाल आता है। नहीं आता? अच्छा। चंद्र प्रभचरित के सर्ग 18 श्लोक 1 और अलंकार चिंतामणि के परिच्छेद 1 श्लोक 99 में दिव्य ध्वनि को सर्वभाषा स्वभाव बतलाया है। उसका स्वभाव ही सर्वभाषा में है। चंद्र प्रभचरित के सर्ग 18 श्लोक 141 में यह भी बतलाया है कि सर्वभाषा रूप वह दिव्य ध्वनि मागधी भाषा थी। दर्शन पाहुड़ श्लोक 35 की श्रुत सागर कृत टीका में लिखा है कि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि आधी मगध देश की भाषा रूप और आधी सर्व भाषा रूप होती है, पर यह देवकृत इसलिए कहलाती है, वह मगध देवों के निमित्त से संस्कृत भाषा रूप परिणत हो जाती है। क्रियाकलाप नंदीश्वर भक्ति के श्लोक 5-6 की टीका में लिखा है कि दिव्य ध्वनि आधी भगवान की भाषा रूप रहती है, आधी देश भाषा रूप रहती है और आधी सर्व भाषा रूप रहती है। यद्यपि यह इस प्रकार की है तो भी इसमें सकल जनों को भाषण करने की सामर्थ्य देवों के निमित्त से आती है, इसलिए यह देवोपनीत कहलाती है, देवों के द्वारा लाई गई वो देवोपनीत। इसमें दिव्य ध्वनि को 8 प्रातिहारियों में अलग से गिनाया है, यानी देवों के द्वारा वो अन्य भाषा में कन्वर्ट होती है, ऐसा यहाँ कहते हैं। महापुराण के सर्ग 23 श्लोक 69-74 में लिखा है, आदिनाथ तीर्थंकर के मुख से मेघ गर्जना के समान गंभीर दिव्य ध्वनि प्रकट हुई, जो एक प्रकार की अर्थात एक भाषा रूप थी। हम ओम ऐसा कहते हैं, वो तो हमने उसको चिन्ह लगा दिया है, ओ और म ऐसा कोई उनका उच्चार नहीं होगा, तो मेघ गर्जना सी है। फिर भी वह सभी प्रकार की छोटी बड़ी भाषा रूप परिणत होकर सभी के अज्ञान को दूर करती हैं। यह सब जिन देव के महात्म्य से होता है, ये जिन देव के वो केवल ज्ञान का निमित्त है ना उसमें, नहीं तो ये जड़ में इतना चमत्कार सबका ज्ञान दूर कर देवे, तो ये भाषा उनके निमित्त से निकली है, ये बात यहां बताना चाहते हैं। जिस प्रकार जल एक रस वाला होता हुआ भी अनेक प्रकार के वृक्षों के संसर्ग से अनेक रस वाला हो जाता है, ये कहां सुना है दृष्टांत आपने? हाँ लक्ष्मी जी, आपने सुना है? नहीं याद है? समय सार में देखो, हमने जल सिंचन किया ना, हमारे खेत में बहुत सारे वृक्ष है, कोई नीम का है और मीठा वाला कोई है क्या आपके पास? अच्छा आम या कोई और भी मीठा, ये गन्ना ले लो ना, तो पानी हो तो नीम के वृक्ष में गया, वो कड़वा हो गया, वृक्ष उसको ग्रहण करता है, उसके रस रूप जो परिणत हो जाता है, और फिर गन्ने में क्या कैसा हुआ, वो मीठा हो गया, करेले में चढ़ गया, वो कड़वा हो गया, यही बात कहते हैं। जिस प्रकार जल तो एक रस वाला होता हुआ भी अनेक प्रकार के वृक्षों के संसर्ग से अनेक रस वाला हो जाता है, उसी प्रकार दिव्य ध्वनि भी श्रोताओं के भेद से अनेक प्रकार की हो जाती है। इसमें देवकृतो ध्वनि इति असत, यह कहकर ध्वनि के देवकृत अतिशयत्व का निराकरण किया है, यानी देवकृत ये ध्वनि है इसका निराकरण किया है, क्योंकि वो ध्वनि ही श्रोताओं के निमित्त से अनेक प्रकार की हो जाती है, ये ध्वनि का अतिशय बताना है। भगत जी ने लिखा है, भगवत जी ने चाहिए, वो रह गए हम बीच में। भगवत जिनसेन इस कथन को जिनेंद्र की गुण की हानि का करने वाला बतलाते हैं। कौन सा? देवों ने किए ऐसा कहने से वो तो जिनेंद्र की गुण की हानि हो जाती है। इससे प्रतीत होता है इस समय इस विषय में दो मान्यताएं थी। एक मत के अनुसार दिव्य ध्वनि का सर्व भाषा रूप से परिणत होना देवों का कार्य माना जाता था, और दूसरे मतानुसार यह अतिशय स्वयं जिनदेव का था। भगवत जिनसेन के अभिप्राय अनुसार दिव्य ध्वनि साक्षर होती है, यह दिव्य ध्वनि सभी विषयों का प्रस्फुट रूप से, अभी शब्द है ना अस्फुट, अभी हमने देखा था, हाँ यहाँ प्रस्फुट रूप से बता रहे, यानी स्पष्ट रूप से अलग अलग व्याख्यान करती है, अतः संकर दोष से रहते। क्या कहते हैं? ये संकर दोष आपको पता नहीं था ना, मिल जाना एक दूसरे में, भिन्न भिन्न स्पष्ट रूप से सबका, स्पष्ट रूप से जिससे अलग अलग विषय, अलग अलग वस्तुएं ख्याल में आ सके, तो उसका स्पष्ट रूप से व्याख्यान करती है। तथा एक विषय को दूसरे विषय में नहीं मिलाती है, अतः व्यतिकर दोष से रहित है। यानी भिन्न भिन्न करके कथन करती, एक इकट्ठा नहीं करती, इसलिए संकर दोष नहीं है। और जो भिन्न भिन्न करते वो समझ में आवे भिन्न भिन्न, तो उसको कहते वो एक विषय को दूसरे में नहीं मिलाती, इसलिए व्यतिकर दोष से रहित है। दूसरी बात, दिव्य ध्वनि प्रातः मध्यान्ह और सायंकाल में छह छह घड़ी तक खिरती है, तथा किन्हीं आचार्यों के मत से अर्धरात्रि को और मिला देने पर चार समय खिलती है। जब गणधर को किसी प्रमेय के निर्णय करने में, ये सात तत्वों की बात नहीं है, किसी प्रमेय भी, कब इतना सारा विषय है गंभीर, करनानी योग आदि, या इतना जो बारह अंग जो कुछ बातें हैं उसमें किसी विषय संबंधी उनके कोई प्रश्न हो, निर्णय करने के लिए, निर्णय में संशय विपर्य या अनध्यवसाय हो जाता है, तब अन्य समय में भी दिव्य ध्वनि खिरती है। ये सहज ऐसा निमित्त निमित्त, वो मुख से बड़े से प्रश्न पूछे, भले ऐसा कथन भी शास्त्र में आता होगा, तो ये सहज ऐसी वाणी खिरती है। वीर सेन स्वामी पहले लिख आए हैं कि जिसने विवक्षित तीर्थंकर के पाद मूल में महाव्रत को स्वीकार किया गया है, उस तीर्थंकर देव की उसके निमित्त से ही दिव्य ध्वनि खिरती है, ऐसा स्वभाव है। यानी गणधर के निमित्त से खिरती है, तो ये गणधर कौन होने चाहिए? जिन्होंने उसी तीर्थंकर के पाद मूल में दीक्षा ली हो। वहां गणधर तो हो गए ही ना, कि बिना गणधर के खाली चक्रवर्ती थे। हाँ, वो भी आया होगा, परंतु गणधर तो वहां होने ही चाहिए। चक्रवर्ती के निमित्त से कैसे छूटेगी, उनके थोड़ा मनोचार ज्ञान था उनके, वो तो जनरल कथन होगा, ये तो खास कथन है ना। गणधर नहीं तो वो गणधर, बिना गणधर के चक्रवर्ती वो तो चला गया युद्ध पर, तो बिना गणधर के, हाँ उस समय खीरी होगी, परंतु वहां उस समय कोई वहां, हाँ गणधर तो होने ही चाहिए, बिना गणधर के छूटेगी ही नहीं, क्योंकि इतना चक्रवर्ती के पास तो इतना ज्ञान नहीं था, वो तो जो मुनिराज होंगे उन्हीं के वो बीज बुद्धि आदि सारी प्रकट होगी, चक्रवर्ती को तो नहीं होगी। ये ऐसा स्वभाव है कहा, तो स्वभाव है तो किसी उसके लिए कोई अपवाद नहीं होगा। ये नौवे भाग में भी लिखा था और यहां भी, इसमें भी, अभी हमने जो पहले भी देखा, देखो क्या कहते, फिर पढ़ते इसको। वीर सेन स्वामी पहले लिखाए हैं कि ये हमने पृष्ठ 69 पर भी शायद देखा था, इसमें देखो देखो, शंकाकार ने पूछा था 69 पर, जिसने आपने पादमूल में महाव्रत, अपने पादमूल में महाव्रत स्वीकार किया है, ऐसे पुरुष को छोड़कर अन्य के निमित्त से दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरती है? यानी वो नियम बताया और फिर उसका कारण पूछ रहा है शिष्य। और यही बात यहाँ 117 में विशेष अर्थ में बताई। इसलिए ऐसा स्वभाव है। तथा वे यह भी लिखाए हैं कि गणधर के अभाव में 66 दिन तक भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी थी। हमने दो बार पढ़ा उसको, ऐसा स्वभाव है, दो बार हो गया। हाँ, इससे प्रतीत होता है कि दिव्य ध्वनि के खिरने में मूल निमित्त गणधर देव है, बताया ना। अन्य भी वहां होगी उस समय हाजिर, जब चक्रवर्ती की बात करनी है तो उसकी अपेक्षा से उसके महत्ता बताने के लिए वहां गए थे, वहां दिव्य ध्वनि खीरी आदि। उनके रहते हुए ही दिव्य ध्वनि खीरती है, अभाव में नहीं। धवला में बतलाया है कि भगवान को केवल ज्ञान हो जाने पर भी लगातार 66 दिन तक जब दिव्य ध्वनि नहीं खीरी, तब इंद्र ने उसका कारण गणधर का अभाव जानकर उस समय के महान वैदिक विद्वान इंद्रभूति ब्राह्मण पंडित से जाकर यह प्रश्न किया कि 5 अस्थिकाय, 6 जीवनिकाय, 5 महाव्रत, ये 6 जीवनिकाय पूछे क्या, मुझे लगा 6 द्रव्य, अच्छा 6 जीवनिकाय, 5 महाव्रत और 8 प्रवचन मातृका कौन है। बंध और मोक्ष का स्वरूप क्या है तथा उनके कितने कारण हैं? ये इतना प्रश्न पूछा। इस प्रश्न को सुनकर इंद्रभूति ने स्वयं अपने शिष्य समुदाय के साथ भगवान महावीर के पास जाने का निर्णय किया। जब इंद्रभूति समोसरण के पास पहुंचे तब मानस स्तंभ को देखकर ही उनका मान गलित हो गया और भगवान की वंदना करके उन्होंने 5 महाव्रत ले लिए। महाव्रत लेने के अनंतर एक अंतर मुहूर्त में ही गौतम को 4 ज्ञान और अनेक रिद्धियां प्राप्त हो गई। देखो हमने इन सभी रिद्धियों का विस्तार से वर्णन भी उसमें धवला में पढ़ा था। यह नियम है कि पहले विधि पूर्वक दीक्षा ली जाती है और फिर अंतर्मग्न अवस्था में ये 7वां गुण स्थान प्रकट होता है, ये बात यहां बता रहे हैं। और वे भगवान महावीर के मुख्य गणधर हो गए। इस कथानक से यह भी सिद्ध होता है, अरे अरे ओवर टाइम हो गया बाकी बात करते हैं। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढो। प्रेरणा भी